ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नबिश्ता आप पर नाजिल फरमाते फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है। और ये लोग यूं कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया, और अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर इनको जरा सी मोहलत न दी जाती। और अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते। हमारे इस फेल पर फिर भी इनका वही इश्काल होता जो अब इश्काल कर रहे हैं, यानी शुबा। और वाकई आप से पहले जो पैगंबर हुए हैं इनके साथ भी मजाक किया गया, फिर जिन लोगों ने इनसे मजाक किया था इनको इस अजाब ने घेरा जिसका ये मजाक उड़ाते थे। आप फरमा दीजिए जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि तकजीब करने वालों का क्या इंजाम हुआ। ये थी आयत नंबर 7 से 11, 7 to 11। इसका उन्वान है आजादी का नाजायज इस्तेमाल। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी आजादी दी हुई है कि वो हक के साथ क्या मामला करे। जब कोई उसके सामने दीन की दावत पेश करे तो क्या वो उसको कबूल कर ले या उसको वो छुटला ले। जो लोग इस तरह के कामों को अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे लोग कल कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में शर्मिंदा भी होंगे और रुसवा भी होंगे। मक्का वालों के सामने जब अल्लाह के नबी आए तो उन्होंने इसी तरह के बेकार किस्म के मुतालबे किए, इसके पास फरिश्ता क्यों नहीं, इसके साथ कोई अर्दली क्यों नहीं, ये इतना गरीब क्यों है, इसके साथ कोई बहुत सारे लोग क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मौजज़े मांगते हैं वो लोग सारी जिंदगी मौजज़े ही मांगते रहेंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि वो हकीकत से अपने आप को दूर कर लेंगे। हमारे लिए इस हिस्से में से सीखने की बात क्या है कि दीन की जो बात समझ आ जाए बस उसको मान जाए, उसके बारे में ना चूंचरा करें, ये ना करें कि हम नहीं मानेंगे अभी और अभी और। क्योंकि अब देखिए कि जब इंसान के दिल में तकब्बुर होता है ना तो वो अल्लाह ताला की बात को इंसानों की बात के बराबर ले आता है। हमारी क्या औकात है कि हमें कोई बात समझ आए, हमारी अकल इतनी छोटी है। हर हुक्म की हिकमत समझ आ सकती है, हरगिज नहीं आ सकती। लिहाजा दीन वालों का इस्तेहजा करना या उनका मजाक उड़ाना, इससे अल्लाह ताला हमें बचा के मानने वाला जहन बनाते। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह कतब अला नफ्सिहि रहमा। आप कहिए जो कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है ये सब किसकी मलकियत है। आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह ने रहम करना यानी मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है। तुमको अल्लाह कयामत के रोज जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह ही की मिल्क है यानी अल्लाह ताला ही का इख्तियार है, और अल्लाह ही की मिल्क है वो सब कुछ जो रात में है और दिन में रहती है, और वही बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। आप कहिए कि अल्लाह के सिवा जो के आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और जो के खाने को देता है और इसको कोई खाने को नहीं देता, और किसी को माबूद करार दूं। आप फरमा दीजिए मुझको ये हुक्म हुआ कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं और तू मुशरिकीन में से हरगिज न हो जाना। आप कह दीजिए कि अगर मैं अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। जिस शख्स से उस रोज वो अजाब हटा दिया जाए तो इस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और वो सरीख कामयाबी है। आयत नंबर 12 से 16, 12 to 16, इनका उन्वान है तुमसे इरादी इबादत मतलूब है। अपने इरादे से इबादत करो। कायनात जो है ये अपने इरादे के बगैर अल्लाह की इबादत कर रही है। पहाड़ खड़े हैं, सूरज घूम रहा है, और कायनात की हर चीज वही काम करती है जो उसको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इंसान से भी यही रवैया चाहता है। ऐसे लोग जो इस किस्म की इबादत करते हैं वो अल्लाह की रहमतों में से हिस्सा पाते हैं। इस हिस्से में एक बड़ी खूबसूरत आयत थी कतब अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स पर रहमत को गालिब कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग आजमाए जाते हैं, तो बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी असल के एतबार से रहम करने वाला है, लेकिन उस माँ की तरह जो बड़ी नरम दिल होने के बावजूद, बड़ी शफीक और मोहब्बत करने वाली होने के बावजूद जब बच्चे की गुस्ताखी देखती है, और बाज दफा वो बच्चा माँ की बात ही ना सुने बल्कि बदतमीजी करने लगे, तो वही मोहब्बत भरी माँ के हाथ भी उठ जाते हैं और वो रोजोर से तमाचा मारती है, उसकी जुबान भी खुलने लगती है। क्या वो माँ रहम दिल नहीं थी? थी, लेकिन उस बच्चे के रवैये और उसके एटीट्यूड ने उस माँ को मजबूर किया कि वो माँ बच्चे पे सख्ती करे। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपनी जात पे रहमत लिखी है। लेकिन जब लोग अल्लाह की रहमत से हिस्सा पाने की बजाय अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ने लगते हैं तो नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उनको पकड़ लेता है। हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि अगर हम अल्लाह की रहमतों में से हिस्सा पाना चाहते हैं तो फिर हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसा अल्लाह ताला हमें बनाना चाहते हैं। अगली आयतें बड़ा खूबसूरत मजमून है उनके अंदर। क्या वही यमसस कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। फिर तुझको अगर अल्लाह नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब और बरतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। आप कह दीजिए, सबसे बड़ी चीज गवाही के लिए कौन सी है? आप कहिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह है, और मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया है, ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिसको ये कुरान पहुंचे इन सबको डरा। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे? क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं? आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए कि बस वो तो एक माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये है आयत नंबर 17 से 19, 17 to 19। इसका उन्वान है दाई की जिम्मेदारी पहुंचा दो, यानी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की जिम्मेदारी क्या है कि पैगाम पहुंचा दे। मदऊ की जिम्मेदारी यानी जिसको पैगाम दिया जाए क्या है कि मान जाओ। अगर आप देखें तो दुनिया में जब इंसान अल्लाह की बात लेके उठता है तो बाज दफा इतनी शिद्दत बरती जाती है कि लोगों को मनवाने की कोशिश की जाती है। तो हर वो शख्स जो अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाहता है, वो दिल में लोगों के लिए दर्द पैदा करे, खैर ख्वाही पैदा करे, अपनी बात को मौसर करे, पुरदलील बात करे, इल्म की बुनियाद पर बात करे, अपने लहजे और लबो लहजे को उस तरह का रखे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। इसके बाद फिर अगर बात सुनने के बाद कोई नहीं मानता तो उसको लोगों के ऊपर उस बात को थोपने की इजाजत नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। और जो लोग सुन रहे होते हैं उनका काम क्या है कि किसी बात को दरमियान में लाने की बजाय, उसके स्टेटस को देखने की बजाय, उसके मसलक और उसके कौम और उसके नाम और उसके बारे में शक और शुबात में पड़ने की बजाय, सिर्फ ये देख लो कि वो जो बात कहता है वो क्या है। जिसकी नजर कलाम पे होती है ना, फिर वो बात करने वाले पे इतनी अहमियत नहीं रखता, उसको इतना जोर नहीं देता। वो कहता है मुझे बात अच्छी मिल रही है, मैं ले लूंगा, बस दैट्स इट, मेरी नजर उस बात पे है। और जिसकी नजर तासुफ वाली होती है ना, या जो कुछ और मकासद दिल में रखता है, फिर वो सारा वक्त बात कहने वाले को देखता है, उसके कॉल को देख रहा है, उसके अमल को देख रहा है। अच्छा जी, इनके तो अपने बच्चे ऐसे हैं, अच्छा जी इनके तो अपने घर ऐसे हैं, अच्छा जी इनका तो ये मामला है, अच्छा ये तो वैसे, अच्छा ये तो खुद ऐसा करते हैं। तो याद रखिए, जब लोग बात की तरफ तवज्जो करने की बजाय बात कहने वाले की तरफ तवज्जो करते हैं तो बाज़ दफा गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कि हम में से कोई किसी के लिए हुज्जत नहीं, अल्लाह का नबी बेहतरीन रोल मॉडल है, उसी को अपनाना है, उसी के पीछे चलना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस हिस्से में एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वो क्या है कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरर देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहे तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये है वो अकीदा जो एक ईमान वाले को मजबूत करता है, जुर्रतमंद करता है। दुनिया में अक्सर हम लोगों से डरते रहते हैं, हाय ये ना किया तो ये हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, अच्छा लोग ऐसा कर देंगे, लोग ऐसे हो जाएंगे, और नतीजा क्या होता है कि दुनिया में बाज दफा अल्लाह को नाराज कर लेता है लेकिन लोगों को नाराज नहीं करता। और जिसको ये यकीन आ जाए कि मुझे मिलना है तो रब से मिलना है, अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी दुआ भी सिखाई इस बारे में कि अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात वला यनफौ ज़ल्जद्दी मिनकल जद्द। ये अहसनुल बयान के पेज 346 पे मौजूद है, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे, यानी अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत, जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, वला मोती अली मा मनात, और जिसको तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता, वला यनफौ ज़ल्जद्दी मिनकल जद्द, और किसी दौलतमंद को, किसी माल वाले को, किसी इज्जत वाले को उसकी ये चीजें फायदा नहीं दे सकती जब तक तू न चाहे। आप यकीन कीजिए कि जब आपका ये यकीन बनता जाएगा ना, आपके दिल से लोगों की बड़ाई निकलेगी। बहुत सारे लोग हक को मानने के बावजूद, कुरान पढ़ने पढ़ाने के बावजूद, कई बार पढ़ने के बावजूद भी अमल क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे इंसानों का खौफ होता है। लोग क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, कॉन्शियसनेस इस बात की कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा गम है इंसानों के लिए। फिर गिल्ट भी आता है, सुनती भी हूँ फिर मानती क्यों नहीं, अकेली होती हूँ तो ठीक होती हूँ, जहाँ चार लोग आते हैं तो हाथ फिसल जाते हैं, दुपट्टा नीचे गिर जाता है, जहाँ ऐसा मामला हो जाता है कि लोग मुझे देख रहे हो तो मेरी अदा बदल जाती है, अकेले मैं नमाज पढ़ती हूँ लोगों के बीच में नहीं पढ़ती। नतीजा क्या है कि ऐसे लोग फिर इस तरह के काम करने लगते हैं कि अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करते हैं। सिर्फ अगर इस हिस्से से अपने लिए यही अमल ले लें कि जब रब देता है तो फिर मुझे किसी की क्या परवाह। देखिए, जिससे लेते हैं ना उसकी फिक्र होती है ना, उसको नाराज ना करें। बस बीवी है, वो शौहर की बुरी बातें भी पसंद करती है, बर्दाश्त करती है, क्यों? उसको पता है कि मेरा गुजारा नहीं इसके बगैर, ये मुझे देगा, वो गुस्से से दे, वो प्यार से दे, वो लाड से दे, वो बीवी उसी से लेती है, क्योंकि उसको पता है मेरा और कोई सहारा नहीं है। इसी तरह बच्चे हैं, उनको पता है माँ बाप ने देना है, जैसे भी मांगेंगे देना इन्होंने ही है, तो फिर हम उन रिश्तों को नाराज नहीं करना चाहते। इसी तरह जिसको इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि जो देना है वो अल्लाह ने देना है और जो छीनना है वो अल्लाह ने छीनना है, तो इनशाला इसके बाद हमारा कुरान को पढ़ने के बाद अमल जो है वो ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। और ये नमाजों में भी अल्लाह के नबी सल्लम पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम। जिन लोगों को हमने किताब दी वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे। और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या अल्लाह की आयात को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी और वो वक्त भी याद करने के काबिल है। जिस रोज हम इन तमाम खलाइक को जमा करेंगे फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे वो कहाँ गए। फिर इनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की कि हम मुशरिक न थे। उनजुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम। जरा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। ये थी आयत नंबर 20 से 24, 20 to 24। इनका उनवान है पहचान कर भी ना माने, वजह क्या है। अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों की यहाँ वजह बता दी कि जो किसी को पहचान के भी उसकी सच्चाई के दिल से गवाह होने या उनके उसकी सच्चाई के दिल से कायल होने के बावजूद भी उसका इकरार नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि इंसान के दिल में तासुब होता है, और बाज़ दफ़ा इंसान जब तासुब वाली निगाह से किसी को देखता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो सही चीज़ को भी गलत समझता है। मिसाल दूंगी कि जैसे इस वक्त हम सब देखें तो सब चीज़ें हमें एक नॉर्मल रंग से दिखती हैं, लेकिन अगर हम में से कोई एक सब्ज़ रंग के ग्लासेस लगा ले तो उसको हर चीज ग्रीन दिखेगी, और वो कहे कि हर चीज ग्रीन है, नहीं उसने ग्रीन ग्लासेस लगाए हैं। इसी तरह तासुब की ग्लासेस लगाने के बाद फिर इंसान चीजों को वैसे देखने लगता है। इस कायनात को अगर आप अल्लाह की कायनात समझ के देखेंगे तो आपको हर चीज अल्लाह का तारुफ दिखेगी, अल्लाह की पहचान दिखेगी। हर चीज बोल बोल इसका सबूत देती है कि हमें बनाने वाला एक है और उसी ने इन सब चीजों को रखा। इसी तरह अल्लाह की तरफ से जो कोई बात करने वाला आता है, जैसे यहूद के पास आया था, उनको भी पता था अल्लाह के नबी ही वो नबी हैं जिनका हमारी किताबों में तذکرہ था, लेकिन इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है कि इंसान हक को मानने के बावजूद ना माने। उसकी वजह यह होती है कि उस मानने से इंसान को अपनी बड़ाई के मुकाम से नीचे आना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ईगो होती है, बाज़ दफ़ा एक चीज़ को जब हम झुठला चुके होते हैं तो दोबारा उसको इकरार नहीं करना चाहते। कभी आपने उस बच्चे को देखा हो जो गुस्से में आके कि मुझे खाना नहीं खाना, अब माँ ने कहा अच्छा नहीं खाते तो ना खाओ, और जब सारे खाने लगे तब भूख लगने लगी, अब जा रहा है कि कोई मुझे कहे तो मैं आऊं, फिर रात को सोते में बर्तन खोलेंगे कि कोई और तो हम खा ले। वजह क्या है, सामने क्यों नहीं खाना चाहते, इसलिए कि इनकार कर चुके हैं। गुस्से में हम किसी को कह देते हैं मुझे नहीं करना, बाद में दिल भी चाह रहा होता मैं नहीं जा रही तो आप जाए, सब जा रहे हैं अब तैयारी देखते हुए, आपका दिल चाह रहा है जाने को, क्यों कि हमने एक दफा जब इसका इनकार कर दिया तो ये इनकार दूसरों के लिए तो हो सकता है लेकिन अल्लाह की जात के लिए नहीं, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इंसान के लिए। वमिनहुम मन यस्तमीउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफकहू वफी आज़ानिहिम वक्रा। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने इनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इस बात से कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डांट दे रखी है, और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इस पर कभी ईमान न लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामखा झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद इससे रुकते हैं, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और इनको इसकी कुछ भी खबर नहीं। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि दोजख के पास से खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयतों को झूठा न बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन कब्ल। बल्कि जिस चीज को इससे पहले वो छुपाया करते थे वो इनके सामने जाहिर हो गई, और ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। आयत नंबर 25 से 28, 25 to 28। इनका उनवान है अब पछताए क्या हो। अगला जुमला आप खुद ही समझ जाएंगे, जब चिड़ियां चुग गई खेत। इन आयात में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों की बात की कि जो दुनिया में बात को सुनने से पीछे रहते थे, तासुब का जहन लेके बात सुनते थे, ऐसे लगता था कि अल्लाह की बात सुन के भी अल्लाह से करीब नहीं होने लगते, दलाइल को देख के भी अल्लाह का कुर्ब नहीं हासिल होता था, और ऐसे लोग बात को नसीहत वाले जहन से नहीं बल्कि मुजादिलाना जहन से सुनते थे, झगड़ने के लिए ऐसी बातों को सुनते थे, ऐब चीनी के लिए ऐसी बातों को सुनते थे। ऐसे लोग जब कल क़यामत के दिन वहां मैदान महशर में पहुंचेंगे तो हसरत करेंगे कि काश हमें दुनिया में एक बार भेज दिया जाए, और हम वहां जाके वो काम करेंगे जो हम अब नहीं करते थे, यानी जो काम छोड़े हुए थे वो अब करेंगे और जो गलत काम करते थे उसको छोड़ देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको एक दफा दोबारा दुनिया में जाने का मौका भी दे दिया जाए ये दोबारा वही करेंगे जो आज करते थे। क्या ये सच नहीं है? कितने ही ऐसे मौके हमारी जिंदगी में गुजरे, हमने नेकियों के इरादे किए, तमन्नाएं की, ख्वाहिशें की, खुद से वादे किए और उन वादों को छुटला दिया। नतीजा क्या हुआ कि आज हम वही काम कर रहे हैं जो पिछले साल भी कर रहे थे। लिहाजा इंसान के लिए जो बात है यहाँ तवज्जो तलब वो क्या है कि जो करना है आज कर लो। वलौरुद्दुलादुलिमान हु अनहु वइन्नहुम लकाज़िबून। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमें ये बात सुननी पड़ जाए कि ये लोग झूठे हैं, ये ऐसी बातें करके असल में अपने गिल्ट को दूर करना चाहते हैं, वरना अल्लाह ताला अगर इनको दोबारा मौका दे तो वाकई ये करेंगे। आप अपनी किसी आदत को छुड़ाना चाहें, अगर बाज़ दफ़ा लोगों की आदत होती है, छोटी सी मिसाल दूंगी, कि चीज़ों को पेंडिंग कर लेते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त पे उस काम को करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है वक्त कम होता है, जल्दी में घबराहट में तैयारी करें, पैकिंग करें, चीज़ें गिर रही हैं, उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, उस वक्त क्या कहते हैं, हाय काश 1 घंटा और मिल जाए ना तो मैं बड़ी अच्छी पैकिंग करूँ। कुछ खवातीन है वो पहले बैठी रहती हैं, जब आखिरी वक्त खाने का आता है तो चूल्हा चलता है, अब हाथ भी जल रहे हैं, बर्तन भी गिर रहे हैं और वो दाल ही गिर गई, वही कैफियत होने लगती है। फिर वो कहती है अच्छा एक दफा बस मैं इस बात से निबट जाऊं, अगला मौका आएगा ना मैंने वक्त से पहले तैयारी शुरू करनी है। फिर अगला मौका आता है, फिर आप वैसे ही होते हैं। इस आयत को अपने लिए हाईलाइट कर लें, मैं इस आयत को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी जिंदगी में। आप इसको आयत नंबर है ये 28 के, अल्लाह ताला कहते हैं कि वलौ रुद्दुलादुलिमान हु अनहु। इस आयत को हाईलाइट करके अपने पास कहीं भी लिख लें, इससे आप एक एक्टिविटी बना सकते हैं। और वो क्या कि अगर मुझे दुनिया से जाते वक्त भी दोबारा अगर मेरा यही हाल होगा जो मेरा रब है तो मैं अपनी सआदत को हाँ छोड़ूंगी। यकीन करें कि आप संभलने लगेंगे, और इस आयत को अगर आप याद कर लेंगे ना तो आप फील करेंगे ये कोई वजीफा नहीं है कि इसको याद करने से आपके काम वक्त पे होने लगेंगे, क्योंकि हम फौरन वजीफे पे भी पहुंचने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को देखकर अपनी जिंदगी में लाएंगे कि जब एक मौका हमारी जिंदगी से गुजर जाता है फिर दोबारा वैसे ही मौका क्यों आता है। इसकी वजह यह कि हम खुद से किए हुए है दरवाजे याद नहीं रखते। वकालु इन ही दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। और ये कहते हैं सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा न किए जाएंगे, और अगर आप उस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा क्या ये अमरे वाकी नहीं, वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने कुफर के इवज अजाब चखो, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मुयन वक्त इन पर अचानक आ पड़ेगा कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई, और हालत इनकी ये होगी कि अपने बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी चीज होगी वो जिसको ला देंगे। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलहुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। और दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय लहव और लाइब के, और दारुल आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है, क्या तुम सोचते नहीं हो। इन आयात का टॉपिक है आखिरत का इम्तिहान, ओपन बुक है। आपने दुनिया में कभी भी इम्तिहान दिए होंगे, दो तरह के इम्तिहान होते हैं, एक वो होते हैं जो आपको पढ़ पढ़ के याद करके देना पड़ता है और फिर आपको ऐन वक्त पे सब भूल भी जाता है क्योंकि आपने याद किया था, आपकी मेमोरी में था, बाद में निकल गया। लेकिन आज का लेटेस्ट तरीका तालीम जो है वो ओपन बुक टेस्ट है, जिसमें लोगों की मेमोरी का इम्तिहान नहीं इंटेलिजेंस का इम्तिहान है कि समझा कितना था। बस अगर आप ये हम दौरे कुरान करें और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दे दें कि ठीक है अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप असाइनमेंट कर लें, और जो बातें आपको दी गई उसी को सवालात में बयान किया जाए, कायदे जाए अपने नोट्स खोल के कर लें, इससे क्या होगा कि पता चल जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी। और दूसरा तरीका कि नहीं आपको जुबानी तारीखें पूछी जाए, तो लिहाजा दूसरी जो चीज़ है उसमें आपकी इंटेलिजेंसी का इम्तिहान होता है, और जिसमें क्लोज टेस्ट होता है उसमें आपकी मेमोरी का इम्तिहान होता है कि आपका कितना लॉस है। अल्लाह ताला ने यहाँ मैदाने महशर के कुछ इम्तिहानों का तरीका बताया, और वो क्या है कि जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उनसे जिंदगी का टेस्ट लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसको ओपन बुक टेस्ट कैसे किया कि आज जो कुरान पाक मेरे और आपके सामने खुला है ये है उस किताब का पर्चा। अल्लाह ने पर्चा आउट कर दिया, हर चीज इसमें लिख दी कि तुम जो करोगे, जो तुम्हारे साथ मामला वहां पेश आने वाला है वो इस किताब में है। वो लोग जिनकी जिंदगी में ये किताब नहीं खुलती, फिर सोचिए कि उन्होंने एक ऑप्शन जाया कर दी। हमारा ख्याल क्या है कि ओपन बुक टेस्ट की बजाय क्लोज बुक टेस्ट देना चाहते हैं, इसीलिए जब हम दुनिया से जाते हैं ना तो हमारे पीछे लोग पढ़ पढ़ के कुरान पढ़ के भेजते हैं, कामयाब वही होगा कि जो अपनी जिंदगी में इस किताब को खोलेगा। लेकिन इस दुनिया में किताब को खोलने से जो चीज रोकती है वो क्या है? इस दुनिया की रौनकें और मेले। इसी को अल्लाह ने यहाँ लाइब और लाहे लफ का इस पे बहुत दफा आगे तस्कर आएगा, तो हम तफसील से देखेंगे कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा कैसे है। लेकिन आज अगर हम इस शऊर को अपने अंदर बेदार करें कि ये जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है, हर आने वाला दिन मुझे मौत के करीब कर रहा है, अगर मैंने उसको ना समझा तो कल मेरे पास इसका मौका चला जाएगा। قد نعلم انه ليحزنك الذي हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अकवाल गमजदा करते हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए इनकी भी तकजीब की जा चुकी है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया, इनकी तकजीब की गई और इनको ईजाएं पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद इनको पहुंची, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और आपके पास बास पैगम्बरों के बास खबरें पहुंच चुकी हैं, और अगर आपको इनका इराज गिरा गुजरता है तो आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान से कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजजा ले आओ तो करो, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सबको राह रास्त पर जमा कर देता, बस आप नादानों में से ना हो जाएं। ये थी आयत नंबर 33 से 36, इसका उन्वान है गमजदा तो होना है, गजबनाक नहीं होना। इन आयात में एक सच्चे दाईये दीन का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज पेश किया गया अल्लाह के नबी के रूप में, और वो क्या है कि जो लोगों की बातें हैं उससे आपको तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी जब सच्चे दिल से लोगों को दीन की तालीम देते तो बस लोग आपकी सच्ची कोशिश को भी झूठा करार देते। अबू जहल ने एक मौके पर अल्लाह के नबी को कहा कि मोहम्मद, हम तुझे तो नहीं झुठलाते, हम तो उस पैगाम को झुटलाते हैं जो तुम लेके आए हो, हमें पता है तुम सच्चे आदमी हो, तुम हमारे खानदान के बंदे हो, और हम तुम्हें नहीं झुटलाते। और इस तरह से वो आपको सच्चा करके अल्लाह के कलाम को झूठा करना चाहते थे। अल्लाह के नबी को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि वो सच जो इतना सच्चा है जिसका इंसान की फितरत भी तकाजा करती है, लोगों को ये बात झूठ क्यों लगती है? आपके अंदर उतना ही लोगों के लिए दर्द पैदा होता, आप उतनी खैर ख्वाही के साथ उनसे बात करते, और नतीजा क्या होता कि आप और ज्यादा पुरजोर अंदाज से उनको दीन की बात बताते। यहाँ जो बात है वो क्या है कि इन बातों पे गुस्सा करने की बजाय दुख महसूस करना। जब एक सच्चे दिल से अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए और लोग उसकी दावत की कदर ना करें, लोग उसको झुटला दें या कदर ना करें, केयर ना करें, तो सच्चे दिल से पुकारने वाले का दिल तो दुखता है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसको ऐसे लगता है कि ये लोग इतनी प्यारी चीज से दूर के हैं, उसको इस बात की कतन परवाह नहीं होती कि लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको इस बात की परवाह होती है कि लोग इतनी प्यारी बात से महरूम है, इतना प्यारा कलाम जो अल्लाह के तरफ से नाजिल हुआ है उसको लोग क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसे मौके पर बाज लोग गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आके ऐसे लोग जो पीछे रहने वाले हैं या आके अमल नहीं करने वाले होते उनके बारे में सख्त लफ्ज बोलते हैं। तो यहाँ एक नुक्ते की बात है कि जब दीन की तरफ बुलाने वाले गुस्से में आ जाते हैं तो फिर बात नहीं बनती, उनको दर्द पैदा करना है, उनके अंदर खैर ख्वाही होगी, जितना ज्यादा लोगों को खैर देना चाहें दे लें, फिर इसके बाद अगर उनको कोई ऐसी चीज भी उसमें दिखानी पड़े कि जो अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है तो अल्लाह ताला कहते हैं जाएं आप कर लें, लेकिन ये मानेंगे नहीं। जो अल्लाह का कलाम सुन के नहीं मानता वो फिर दूसरे मौजजात को देख के भी बिल्कुल नहीं मान सकता। वो लोग जो दुनिया परस्त होते हैं वो मादा परस्ती के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो दीन के दाई की भी मादा परस्तियत को देखने लगते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीजें दिखाए जिससे दुनिया का फायदा भी दिखे। तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में इसका जवाब नहीं देना, आखिरत में इसका जवाब जो है वो अल्लाह की अदालत में जाके मिलेगा। तसल्ली दे दी अल्लाह के नबी को, गम ना करें, सुनेंगे वही, कबूल वही करेंगे जो सुनेंगे। आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ आने का पहला इंडिकेशन है इन आयात में, और वो क्या कि सुनने को दिल जाता है। अगर अब हम सबको भी अल्लाह का कलाम सुनना अच्छा लगने लगा और अब हमें लगने लगा कि वाकई ये कलाम जो है ये सुनने के काबिल है, चलो कुछ वक्त निकालते हैं, कुछ दिन, कुछ जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को लाते हैं कि जिससे ये कलाम हमारी जिंदगी में आए, तो फिर मुबारकबाद के काबिल है वो लोग। और वो लोग जो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब कुरान पूरा हो और हम आजाद हों, तो उनको इस चीज की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिल में इस कुरान को अब सुनने का शौक पैदा कर दे। وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ और ये लोग कहते हैं इन पर कोई मौजजा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस बात की कि वो कोई मौजजा नाजिल करे, लेकिन अक्सर लोग बेखबर हैं। और जितनी किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिंद जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गिरोह न हो, हमने दफ्तर में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयतों की तकसीब करते हैं वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे बने हुए हैं, अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और वो जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। ये थी आयत नंबर 37 से 39, इसका उन्वान है इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी फितरत है। यह एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की गई जिसको हम अपने लफ्जों में देखेंगे, और वो क्या है कि जिस तरह हम इंसानों को एक शरीयत दी गई, कुछ चीजें हलाल हैं, कुछ हराम है, अल्लाह को एक मानना है और कुछ काम हमारे करने के हैं, कुछ ना करने के हैं, बिल्कुल इसी तरह की शरीयत अल्लाह ताला ने जानवरों को भी दी है, परिंदों को भी दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी शरीयत जो है हमें वही के जरिए, इस किताब की सूरत में नबी के जरिए, फरिश्ते के जरिए से मिली है, लेकिन जानवरों की शरीयत उनकी फितरत के अंदर रासिख कर दी गई, गंदा कर दी गई। मिसाल दूंगी कि बकरी की शरीयत के अंदर गोश्त हराम है, इसी तरह शेर की शरीयत के अंदर सब्जी हराम है। अब शेर कभी नहीं चाहेगा कि वो गोश्त छोड़ के सब्जी खाने लगे, और आप कभी किसी बकरी को नहीं देखेंगे कि वो सब्जी छोड़ के गोश्त खाए। जहां बकरियां गोश्त खाने लगें और जहां के शेर इतने बुज़दिल हो जाएं कि वो घास खाने लगें, तो उस जंगल का निजाम बदल जाएगा। बिल्कुल यही हाल इंसानों की दुनिया का है। जब हम अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियों को छोड़कर अपनी मनपसंद किस्म की जिंदगी की चीजों को लेने लगते हैं, तो कायनात का निजाम इसी तरह बिगड़ने लगता है। यही है चीज सिराते मुस्तकीम से हटना। कुल आरई तुम इनाता कु मजाबुल्लाह, आप कहिए अपना हाल तो बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ जाए या तुम पर क्यामत आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो बल्कि खास उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे, और जिनको तुम शरीक ठहलाते हो उनको तुम सब भूल जाओगे। आयत नंबर 40 से 41, इनका उनवान है अल्लाह के सिवा सारे सहारे झूठे। इंसान की तबीयत है कि जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारने लगता है। मक्का वालों का हाल दूसरा था, वो आम छोटे छोटे कामों में अपने बुतों को पुकारते, लेकिन जब समंदरों में और दरियाओं में कश्तियों पे सवार होते और तूफान आ जाते तो उस वक्त कहते कि अब जमीन के खुदा हमारी खिदमत नहीं कर सकते, अब ऊपर वाले को पुकारो। यही थी वो सोच जिसने इकरमा बिन जाहल को इस्लाम के करीब कर दिया, कि वो लोग जो हमारे बुत पानी में नहीं आ सकते फिर वो खुश्की पे कैसे आएंगे। और ये एक हल्की सी चकाचौंध थी जिसने फितरत को अगर किया और वो इस्लाम की तरफ आ गए। हम सब अपनी जिंदगी में से कई मौके देख सकते हैं कि जब हमने अल्लाह के मां सिवा अगर किसी और को पुकारा तो वो हमारा काम नहीं हुआ, या अगर वो काम हो भी गया लेकिन अल्लाह से हमारा ताल्लुक टूट गया, तो ऐसे पाने से इंसान को ना पाना बेहतर है। कभी भी जिंदगी में कोई अनयूजल हालात आए, कोई परेशानी को, आजमाइश को, बीमारी, फौरन समझ लें कि ये मेरे ईमान का इम्तिहान है। हमारे यहाँ कहते हैं जिसकी चीज जाती है उसका ईमान भी जाता है। लोग उसको मशवरे देने लगते हैं, फुलां दरगाह पे जाना, फुलां कब्र पे जाना, फुलां बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, और आप वहां जाके हो सकता है उसको बेटा बेटा कह के अल्लाह से बेटा लेके आ जाए, लेकिन आपसे इंतकाम ये लिया जाएगा कि आपको फिर दिल में ये डाल दिया जाएगा कि ये फुलां कब्र से मिला है। इंशाल्लाह आगे कहीं ये आयत डायरेक्ट आएंगी तो आपको पूरी हदीस भी कोट करवाऊंगी। वलकद अरसलना इला उम्मिम मिन क़ब्लिका फ़ाहसनाहुम बिलबासाई वद्दर्रौई लअल्लहुम यतदर्रउन, और हमने और उम्मतों की तरफ भी और जो कि आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे, और हमने इनको तंग दस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो आजजी का इजहार करें। सो जब इनको हमारी सजा पहुंची थी तो उन्होंने आजजी क्यों इख्तियार न की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खूबसूरत करके दिखाए। फिर जब वो लोग इन चीजों को भूले रहे जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने इन पर हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए, यहाँ तक कि जब इन चीजों पर जो कि इनको मिली थी वो खूब इतरा गए, फिर हमने इनको पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए, फिर जालिमों की जड़ कट गई, और अल्लाह का शुक्र है कि जो तमाम आलम का परवरदिगार है। ये है आयत नंबर 42 से 45, 42 से 45, इसका उनवान है अल्लाह की ढील को अपने लिए तंबीह समझो। तंबीह कहते हैं वार्निंग। इन आयात में एक बहुत ही खूबसूरत असूल है, और आप इस आयत को भी हाईलाइट कर सकते हैं, आयत नंबर 44। इसकी तफसीर भी इंशाल्लाह आप सुनुल बयान से पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ एक कुलिया बयान किया गया, और वो क्या है, एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, इंशाल्लाह बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि बास लोगों को हम देखते हैं कि वो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, इसके बावजूद दिन ब दिन उनके ऊपर नेमतों के दरवाजे खुलते रहते हैं। माल है, औलाद है, इज्जत है, फेम है, ग्लैमराइज होना है, शोहरत है, लोगों की नजरों में बड़ा बनना है, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि जब तुम किसी को नाफरमानियों के बावजूद नेमतों में पलता फलता देखो तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से उसकी लम्हा लम्हा की पकड़ है। जालिकुम इस्तिदराज, जालिकुम इस्तिदराज, इसको कानून इमहाल कहते हैं। आप इस आयत का दूसरा टॉपिक ये भी लिख सकते हैं, मोहलत का कानून। जब लोग गलत काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला उनको और ढीला करता है, और ढीला करता है, ताकि वो और गुनाहों में आ जाएं, और जब वो खूब गुनाहों में फंसने लगते हैं तो फिर अल्लाह ताला अचानक उनको पकड़ता है। छोटी सी मिसाल समझाने के लिए बताऊंगी कि आपके घर में कोई नई मुलाजिम आती है, आप चाहते हैं कि मैं जरा देख लूँ ये ईमानदार है कि नहीं, आप 5 पाउंड का नोट डालते हैं, उठा लेती है। एक सूरज ये कि आप उसको फौरन पकड़ लें, अच्छा ये चोरी की लालच से आई थी, पकड़ो और पुलिस को दे दो या भाग जाओ कल से नाना। वो सोचे कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। नहीं, ये छोटी ज्यादती है। दूसरी सूरत है आपके, अच्छा उठाए उठाने दो, अगले दिन आप 10 का डाल दें, तीसरे दिन 20 का डाल दें, चौथे दिन 50 और 100 का, पांचवे दिन डालें। हर दिन वो उठा रही है, जब 100 का पकड़ेगी ना उस दिन आप कान से पकड़ेंगे, फिर आप कहेंगे ये 100 भी दे दो, कल के 50 भी दो, परसों के 20 भी दो, और साथ ही आप पुलिस को बुलाएंगे और उसको भेज देंगे। ये है इस्तदराज। अल्लाह ताला लोगों को गुनाह करता देखे और फौरन पकड़ ले, उसकी रहमत है। जितना बंदा अल्लाह को प्यारा होता है ना, अल्लाह उतना उसको फौरन पकड़ लेता है ताकि वो बड़े गुनाह में ना जाए। जैसे बीमारी को फौरन पकड़ ले, निपदाई वलिंदा बट वली कैफियत। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह और मौका देता है, और फलो फूलो हो, और मोटे हो जाओ, और खा लो पी लो, जब वो खूब फूलने लगते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको अचानक पकड़ लेता है। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला, बाज दफा कुछ लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं इनको पानी पीना देना, क्योंकि डॉक्टर को उम्मीद होती है कि इनकी सेहत हो जाएगी। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं होती, डॉक्टर कहते हैं ये जो मांगे उनको दे दो। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों की अल्लाह आखिरत से पुर उम्मीद होते हैं उनको दुनिया में परहेज देते हैं, कुछ चीजों से बचा लेते हैं, हर चीज नहीं देते उनकी मांगी हुई। लेकिन कुछ लोगों की आखिरत से जब अल्लाह ताला मायूस हो जाते हैं कि ये आखिरत के काबिल नहीं रहे, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में खूब खिलाते पिलाते हैं कि खा पी के मरे, भूखा क्यों मरे, प्यासा क्यों मरे। इंसान को वो निगाह चाहिए कि जो उसको अल्लाह के इशारों को और अल्लाह की निशानियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और ये सब अल्लाह की निशानी है। खुला रही तुम इन अखसारी, आप कहिए बतलाओ तो सही, अल्लाह अगर तुम्हारी समात और बसारत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन माबूत है कि वो तुमको फेर दे। आप देखिए हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये लोग एराज करते हैं। आप कहिए ये बतलाओ, अगर तुम पर अल्लाह का साबा पड़े, ख्वा अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय जालिम लोगों के और लोगों को भी हलाक किया जाएगा? और हम पैगम्बरों को सिर्फ इस वास्ते से भेजा करते हैं कि वो बशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्त कर लें अपने आप को, सो इन लोगों पर कोई खौफ और अंदेशा न होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएं इनको अजाब पहुंचेगा, बवजह इसके कि जो वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए ना तो मैं तुमको ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमको ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ जो मेरे पास वही आती है इसका इत्तेबा करता हूँ। आप कहिए कि अंधा और बीना यानी देखने वाला कहीं बराबर हो सकता है, सो क्या तुम गौर नहीं करते। ये है आयत नंबर 46 से 50, 46 से 50। इसका उन्वान है कान आंख और दिल अल्लाह को पहचानने के लिए हैं। ये तीन रिसेप्टर्स हैं, कबूल करते हैं हक को। आंखें क्यों मिली कि अल्लाह के रास्तों को देखो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो। कान क्यों मिले कि इन कानों को हक की बात सुनाओ। और दिल क्यों मिला, ताकि अल्लाह से मोहब्बत करे, मार्फत पाए, दुनिया में होने वाले वाकयात की हिकमत जानने की कोशिश करे। लेकिन जब लोग जानवरों के लेवल पे जीने लगते हैं और जब वो एनिमल इंस्टिंक्ट के आदि हो जाते हैं, तो नतीजा होता है कि इसमें से किसी चीज से भी वो फायदा नहीं उठाते। वो अपनी आंखों और कानों को उन चीजों की तरफ तो ले जाते हैं कि जो चीजें उनको नाफरमानियों की तरफ ले जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं ले जाते। ऐसे तमाम लोगों के लिए सबक इन आयात में कि फिर ऐसी आंखों को अल्लाह ताला अंधा भी कर सकता है और ऐसे कानों को अल्लाह ताला बहरा भी कर सकता है। जो लोग एक दफा हक का इनकार कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला उनसे तौफीक छीन लेता है और वो दुनिया में इस तरह जीने लगते हैं कि बस उनकी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी होती है कि जो अपनी पसंद की जिंदगी हो, जिसमें अल्लाह ताला की बात और उसकी जात की कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी बेमकसद और बेकार जिंदगी से पनाह दे दे कि जो सिर्फ दुनिया के तकाजे पूरे करते करते हम दुनिया से चले जाएं। انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैरुल्लाह हैं, ना इनका कोई मददगार होगा ना कोई शफी होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और इन लोगों को मत निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, खास इसी की रजामंदी का इरादा रखते हैं। इनका हिसाब जरा भी आपके मुतल्लिक नहीं और आपका हिसाब जरा भी इनके मुतल्लिक नहीं कि आप इनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाल रखा है ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फजल किया है, क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को खूब जानता है। आयत नंबर 51 से 53, इसका उन्वान लिखिए इनकी खुशी के लिए कमजोरों को खुद से दूर ना कीजिए। मक्का वाले किब्र की नफ्सियात का शिकार थे। सरदार होने का मान था, दौलत का मान था, हुसन का मान था। अल्लाह के नबी को कहते थे, ये बिलाल और ये जो गरीब किस्म के लोग हैं, इनको अपनी महफिलों से आप उठा दें, फिर हम आएंगे। वो दीन जिसकी बुनियाद इक्वलिटी पे थी और मसावात पे थी और बंदे के बंदे से फर्क पे नहीं थी, फर्क को मिटाने वाले थी, उन्होंने उस दीन की असल को समझा नहीं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को यहाँ बताया कि आप ऐसे मुखलिस लोगों को मत छोड़िए जो अल्लाह ताला की तरफ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या दौलत का और गुर्बत का ताल्लुक है? हरगिज नहीं। हमारे यहाँ एक गलत फहमी है और वो कह के दौलतमंद हमेशा गुनाहगार होंगे और अल्लाह के नाफरमान होंगे और वो अल्लाह की निगाहों में कोई कदर नहीं रखते। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मालो दौलत दिया होता है, वो एक गिल्ट का शिकार होने लगते हैं और बाज दफा लोग किसी के दौलतमंद होने को उसका गुनाहगार होना समझ लेते हैं। तो याद रखिए, ऐसी बात नहीं। इसी तरह बाज लोगों की सारी हमदर्दियां जो है वो गरीबों के साथ होने लगती हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये बड़े बेचारे और मिस्कीन है। हालांकि गरीब जब जहालत में होता है तो वो उस अमीर से ज्यादा खराबी पैदा करता है जो दौलत के अंदर होने के साथ साथ नाफरमानियां करता है। ना किसी की दौलत मतलूब है, ना किसी की गुर्बत बड़ी बात है। अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तक्वा है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। लिहाजा ऐसे झूठे मेयार बना के खुद को हिदायत से दूर कर लेना या ऐसी खुशफहमियों की जन्नत में कोई रहता है और उसके पास इसलिए न जाना कि वो दौलतमंद है, अल्लाह इससे निकालना चाहता है। मुझे ऐसे लगता है कि इन आयात में अल्लाह ताला गरीब लोगों के कॉम्प्लेक्स को दूर करता है और अमीर लोगों के किबर और उनके प्राउडनेस को खत्म करता है। कि अल्लाह का दीन सबके लिए एक जैसा है, जिसको फायदा लेना है वो सबके साथ मिलकर लेगा, तभी उसको असल दीन की रूह समझ आएगी। वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। और ये लोग जब आपके पास आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो यूं कह दीजिए कि तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया कि जो शख्स तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे जहालत से, फिर इसके बाद तौबा कर ले और इसलाह करे, तो अल्लाह की ये शान है कि बड़ी मगफरत करने वाला और वो बड़ी रहमत वाला है। इसी तरह हम आयात की तफसील करते हैं और ताकि मुजरिमों का तरीका जाहिर हो जाए। ये थी आयत नंबर 54 से 55, 54 to 55। इसका उनवान क्या है? अन्नदमुत तौबा, नदामत ही तौबा है। ये मैंने एक हदीस के लफ्ज बोले थे कि नदामत और शर्मिंदगी ही तौबा है। अल्लाह ताला इस आयत में उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता है कि जो गुनाहों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो चुके हो, मैं तुम्हें बिल्कुल ताना नहीं दूंगा, एक दफा मेरी तरफ आके देखो। इस पे एक वाकया याद आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, बारिश ना हुई, सब लोग जमा हुए, खुले मैदान में गए कि वहां मिलके दुआ मांगे। इसको आज के दौर में सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। दुआ मांगने के लिए वहां जमा हुए, दुआ मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम के बस वही के जरिए खबर आ गई कि आपकी इस महफिल में एक ऐसा शख्स है जो बड़ा गुनाहगार है और उसके गुनाह की वजह से अब किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों के राज अफशान नहीं करते, पर्दा पोशी अल्लाह की आदत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नाम लिए बगैर बता दिया कि भाई इस तरह हम में से कोई ऐसा शख्स है जो बड़ा गुनाहगार है और दूसरों की दुआ कबूल नहीं होगी। अब वो बंदा जो खुद गुनाह करके बैठा होता है ना, उसको पता होता है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, सूरत क़यामत में आता है। खैर, इंसान अपने आप को खुद जानता है। जो शख्स गुनाहगार था, न जाने उसने क्या गुनाह किया हुआ था, उसको बड़ी अपने ऊपर शर्म आई कि मैं कितना बदबख्त हूँ कि एक मेरी वजह से सबकी दुआ कबूल होने से रह गई। उसने वहीं बैठे बैठे अपने रब से तौबा की कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अब आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। वो उसके दिल के राबते अल्लाह के साथ जुड़ रहे थे। इतनी देर गुजरी कि छम 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 बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला ये क्या बात हुई, अभी तो ये कहा गया था कि बारिश नहीं होगी और आपने अभी बारिश होने लगी। कहा, मूसा तुझे नहीं पता, उस बंदे ने यहाँ बैठे बैठे तौबा कर ली। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।